ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराशिम भागवतम स्कंद 3 अध्याय 13 अध्याय का शीर्षक है भगवान वराह का प्राकट्य श्लोक संख्या 2 और 3। श्लोक संख्या 2 इस प्रकार से है विदुर उवाच सवै स्वायंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नी किं चकार ततो मुने। विदुर ने कहा हे मुनि ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभुव ने अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। श्लोक संख्या 3 जो बोर्ड पर लिखा हुआ है चरितम तस्य राजर्षे आदिराजस्य सद्मः गृहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रय ह्यसो चरितं तस्य राजर्षे आदिराजस्य सत्तमः ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रय ह्यसो चरितं तस्य राजर्षे आदिराजस्य सत्तमः ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रय ह्यसो चरितं चरित्र तस्य उसका राजर्षे ऋषि तुल्य राजा का आदिराजस्य आदि राजा का सत्तमा हे अति पवित्र ब्रूहि कृपया कहे मैं मुझको श्रद्धानाय प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक है उसे विश्वक्सेना भगवान का आश्रय जिसने शरण ले रखी है ही निश्चय असो वह राजा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के तो अनुवाद इस प्रकार से है हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य है कृपया उनका वर्णन करें मैं सुनने के लिए अति उत्सुक हूं। तात्पर्य श्रीमद् भागवत भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य कथाओं से उत्प्रेरित है। परम जगत में भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त में गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं इसलिए भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्त के चरित्र तथा कार्यकलापों के श्रवण का फल एक ही होता है अर्थात इनसे भक्ति का विकास होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु च दर्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्रियाद्वैतगदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। चरितं तस्य राजर्षि आदिराजस्य सप्तमः ब्रूहि मे शब्दधानाय विश्वक्सेनाश्रयः सो। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ राजाओं के आदि राजा मनु, भगवान हरि का महान भक्त था, अतः उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य है। कृपया उनका वर्णन करें, यदि सुनने के लिए अति उत्सुक हो। तो चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में श्रील कृष्णदास कविराज दूसरे ही श्लोक में जैसे ही अपनी ये महान कृति चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, उसके दूसरे श्लोक में ही वो अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करते हुए वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं नित्यानंद के साथ। और उस संस्कृत श्लोक जो कृष्णदास कविराज वहां लिखते हैं, तो उसी का ही जब वो बंगला में अलग अलग पयारों में उसका अनुवाद प्रस्तुत करते हैं, तो वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी देन क्या है इस संसार के जीवों के लिए। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़दये पुष्पवंतो चित्र छंदो तमोनुदो। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मैं चैतन्य महाप्रभु और उनके जो नित्यानंद प्रभु हैं, ऐसे दोनों को वंदना, उन दोनों की वंदना कर रहा हूं। क्यों वंदना कर रहा हूं? वो कहते हैं सहोदितो, वो एक साथ इस जगत में उदित हो गए हैं। और फिर वो कहते हैं, कहां उदित हो गए? गौड़दये, गौड़दये मीन्स पूर्व जो गौड़ देश है, बंगाल का दूसरा जो नाम है गौड़ देश, ऐसे गौड़ देश में के जो पूर्व क्षितिज है वहां ये दोनों उदित हो गए हैं। लेकिन ये दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। पुष्पवंतो मीन्स दो, पुष्पवंतो का मतलब है कि ये सूर्य और चंद्रमा के समान है। नित्यानंद प्रभु को क्या कहा जाता है? नेताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। चैतन्य महाप्रभु की तुलना सूर्य से की गई है और नित्यानंद प्रभु की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस संसार में कभी भी ऐसा देखा नहीं जाता कि एक ही दिशा में दोनों उदित हो जाए, सूर्य और चंद्रमा एक साथ। तो यहां गौड़ देश के पूर्व क्षितिज से ये दोनों एक साथ उदित हो गए हैं। और क्यों उदित हो गए हैं? कृष्णदास कविराज कहते यही तो अद्भुत है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है ये गौर और नित्यानंद के बारे में। कहते हैं छंदो, छंदो का मतलब है सारे जगत को परम आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तमोनुदो, तमोनुदो का मतलब है कि जगत के जीवों का जो जीवन में अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करने के लिए गौर हरि और नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए हैं। और प्रकट होकर उन्होंने क्या किया? सारे जगत को आनंद से भर दिया, कृष्णदास कविराज कहते हैं। इसी कारण से गोविंद घोष कहते हैं, यदि गौर ना है तो तवे की है तो। और वास्तव में इस जगत में यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अब उसी का अनुवाद में कृष्णदास कविराज लिखते हैं कई पयारों में जिनको मैं पढ़ूंगा। यही मत दुई भाई जिबेर अज्ञान तमोनाश करी कैल तत्व वस्तुदान। तो इस प्रकार से ये दोनों भाई जगत में प्रकट हो गए और अंधकार को दूर कर दिया और जीवों को सबसे मूल्यवान चीज उन्होंने प्रदान की। त तत्ववस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। तो उन्होंने क्या दिया ये जगत को तत्व वस्तु, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्ण प्रदान किया। कृष्णा कृष्ण की भक्ति और कृष्ण का प्रेम जिसको प्राप्त करने के लिए नाम संकीर्तन की आवश्यकता है। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इन्होंने ये तत्व वस्तु प्रदान की सारे जगत को, और ये सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा उदित होता है और सारा अंधकार दूर करता है और हर चीज को व्यक्ति सही रूप से देख सकता है, उसी प्रकार से द्वी भाई हृदय क्षाली अंधकार, ये दोनों भाइयों ने जगत के जीवों के हृदयों का अंधकार दूर कर दिया। और द्वी भागवत संगे कराम साक्षात्कार, महाप्रभु ने क्या कर दिया, केवल अंधकार दूर नहीं किया जीवों लोगों के जीवन से, लेकिन दो चीजों से इंट्रोड्यूस कराया इस संसारिक जीवों को। वो दो चीजें क्या है, पहले तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवों के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर किया। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं कि महाभारत में 5 प्रकार का अज्ञान का अंधकार का वर्णन आया है। 5 प्रकार का अज्ञान है जो चैतन्य महाप्रभु ने सारे जीवों के हृदय से क्या कर दिया, निकाल दिया। सबसे पहला अज्ञान क्या है कि व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मान लेता है, या मैं क्या हूं ये शरीर हूं, या शरीर को ही आत्मा मानना या शरीर से ही अपनी पहचान करना, ये सर्वप्रथम अज्ञान है। और दूसरा अज्ञान क्या है, भौतिक इंद्रियों की तृप्ति को ही अपने जीवन का चरम सुख मानना, ये दूसरे प्रकार का अज्ञान है कि इंद्रिय तृप्ति ही परम सुखमय है, उससे बढ़कर सुख देने वाली वस्तु इस संसार में उपलब्ध नहीं है। और तीसरा अंधकार लिखते हैं महाभारत में कि भौतिक पहचान जब इस शरीर से कर लेता है जीव, तो क्या करता है, सदैव वो इस संसार में चिंताग्रस्त रहता है, सदैव चिंतित रहता है। और चौथा अंधकार, इसके कारण व्यक्ति सदैव शोक करता रहता है, जो वस्तु नहीं है और वो चली भी जाए उसके लिए शोक करता रहता है। और पांचवी चीज श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महाप्रभु ने अंधकार को दूर किया, वो है कि व्यक्ति ये सोचता है कि परम सत्य के आगे भी और कुछ है, इस प्रकार का भी एक अज्ञान रूपी अंधकार है, जिसको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये दोनों क्या करते हैं, जीवों के हृदय से निकाल देते हैं और जीवों को इंट्रोड्यूस कराते हैं दो चीजों से। वो दो चीजें क्या है, दो भागवत है, दुई भाई हृदय रक्षाली अंधकार, दो भाई मिलकर हृदय का अंधकार दूर करते हैं और हमें सबसे दो मूल्यवान वस्तु इस जगत में देते हैं। इसलिए कहा गया है चैतन्य महाप्रभु की जो सर्वोच्च भेंट है, गिफ्ट है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजों से हमें मिलाया है, दो भागवतों से। एक कौन है, एक भागवत शास्त्र है जिसको हम नित्य रूप से श्रवण करते हैं, और दूसरा है आर भागवत भक्ति रस पात्र, और दूसरा भागवत भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त है, जो भक्ति रस का क्या है, पात्र है। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, तार हृदय तार प्रेम हय वश। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों भागवतों के द्वारा भक्ति का रस हमें प्रदान किया है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ऐसे अद्भुत चैतन्य महाप्रभु हैं, जो जीवों की, जो जीवों का हृदय की तुलना वो एक गुफा से करते हैं जिसमें अंधकार ही अंधकार है, ऐसे अंधकार को चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, दूर कर दिया। किसके द्वारा, ये दो भागवतों के द्वारा, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत। इसलिए शास्त्र कहते हैं
कि चैतन्य महाप्रभु की सर्वोच्च देन कहा जा सकता है कि नाम संकीर्तन है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, उनके भक्त हैं। यदि उनके भक्त नहीं होते तो नाम संकीर्तन का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवत नहीं होते, ये नाम संकीर्तन के बारे में कभी भी कई जन्मों तक हम अपने जीवन में नहीं सुन पाते। इसी कारण से कहा गया है कि महाप्रभु के भक्त ये चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी भेंट इस संसार को है। और ऐसे ये दोनों चीजें ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, इन दोनों में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति का रस मैंने भर दिया है। इसलिए भागवतम के शुरुआत में वर्णन आया है क्या, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। हे रसिक जन क्या करतो, क्या करो कि ये जो भागवत रूपी महान ग्रंथ है इसको पीना शुरू करो। इसलिए सनातन सनत कुमार पद्म पुराण में नारद को कहते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेना हरि चित्तम शमाशये। सनत कुमार नारद मुनि को कहते हैं कि नारदा सदा सेव्याम श्रीमद् भागवती कथा, सदा क्या करो, भागवतम का सेवन करो। तो कोई पूछ सकता है कि ये भागवतम का निरंतर सदा सेवन करने से क्या लाभ हो सकता है, तो वो कहते हैं यशा श्रवण मात्रेण, जिसका केवल श्रवण करने मात्र से हरिर चित्तम शमाशयत। ऐसे नहीं कि हरि में थोड़े समय के लिए हमारा चित्त लग जाता है। सनत कुमार कहते हैं नारद को कि हरि में पूर्ण रूपेण हमारा चित्त आश्रय ग्रहण करता है। इसलिए भागवतम को कोई साधारण ग्रंथ नहीं सोचना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि संसार के सारे ग्रंथों को जला दो, केवल भागवतम को रखो। और किसी से प्रेम करना है, किसी से आसक्ति बढ़ानी है और किसी का गुणगान करना है तो वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए कहा गया है, इसलिए सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथ कृष्ण लीला स्तव में श्रीमद् भागवतम का कई श्लोकों में गुणगान करते हैं। उसमें एक श्लोक में वो कहते हैं बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए श्रीमद् भागवतम के चरणों में सनातन गोस्वामी प्रार्थना करते हुए कहते हैं असाधु साधु तादायन। वो कहते हैं भागवत तुम कैसे हो, असाधु व्यक्ति को साधु बना देते हो। हाँ? कि जो नीच व्यक्ति है उसको उत्तम बना देते हो। हान मुंच कदाचिन मां प्रेमना रत कंठयो स्प्रहा। वो कहते कि हे श्रीमद् भागवतम मेरे ऊपर दया करो, कभी भी मुझे त्यागो मत, और आप क्या करो कृपा पूर्वक मेरे कंठ में आकर विराजमान हो जाओ, ताकि मैं क्या करूंगा निरंतर कृष्ण की महिमा का गान कर सकूंगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये गौड़िया वैष्णव का प्राण है। गौड़िया वैष्णव जो अपने आप को महाप्रभु का अनुयायी घोषित करता है और वो भागवतम से प्रीति नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति महाप्रभु का अनुयायी नहीं है। महाप्रभु का अनुयायी होने का क्या कर रहा है, वो केवल दम्भ या ढोंग कर रहा है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि गौड़िया वैष्णव भागवतम के बिना अपना प्राण नहीं रख सकते। हाँ, इसलिए तो सारे छह गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर में एकत्रित होते थे और प्रतिदिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुना करते थे। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा जगन्नाथपुरी में कि तपन मिश्र के जो पुत्र है रघुनाथ भट्ट, जिनका अनुराग भागवतम के प्रति सब सर्वाधिक है, तो उनको एक ही आदेश दिया। रघुनाथ भट्ट को कहा कि जब तक तुम्हारे माता पिता वाराणसी में है तब तक उनकी सेवा करो, क्योंकि वो महान वैष्णव है, और उसके उपरांत सब कुछ छोड़कर विवाह न करके मेरे पास आओ और फिर वृंदावन चले जाना। और श्रीमद् भागवतम के द्वारा कृष्ण की महिमा का निरंतर गान करना। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी निरंतर गोविंद देव मंदिर में गोविंद देव के सामने श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते थे और छह गोस्वामी, बाकी जो गोस्वामी हैं और भी जो ब्रजवासी हैं, वो प्रतिदिन सुबह और संध्या में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे। तो इसलिए भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि हमारे जैसे कौवे उसमें प्रवेश करेंगे तो दूसरी ओर से हंस बन के निकलेंगे। उस दिन में चर्चा कर रहा था अगस्त्य मुनि की, दक्षिण भारत में मेल्लकोटे के पास बैंगलोर के नजदीक एक रामानुजाचार्य का स्थली है, जहाँ अगस्त्य मुनि का एक स्थान है, जहाँ गोपाल है, हिमवत गोपाल की आराधना करते हैं वहां। तो ऐसे अगस्त्य मुनि ने वो स्थान बनाया था, वहां अगस्त्य मुनि भजन करते थे और अगस्त्य मुनि ने वहां एक कुंड बनाया था। आज भी वहां जाएंगे तो वहां कोई भी कौवा नजर नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो कुंड ऐसा कुंड है, अमृत का कुंड है। तो एक बार एक कौवा उसमें गिर गया या घुस गया तो जैसे ही घुसा उस जल में तो निकल के बाहर हंस बन के आ गया, तो इसलिए एक भी कौवा नजर नहीं आता। तो हम सोच रहे थे कि वास्तव में अगस्त्य मुनि ने तो एक छोटा सा कुंड वहां दक्षिण भारत में बना दिया, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में एक इतना बड़ा कुंड बना दिया। और वो कुंड क्या है? श्रीमद् भागवतम है। जो भी कौवा घुसेगा इस श्रीमद् भागवतम में तो निश्चित रूप से दूसरी ओर से क्या बन के बाहर निकलेगा? हंस बन के बाहर निकलेगा। लेकिन हम ऐसे कौवे हैं कि हम सदैव गंध में ही रहना चाहते हैं, गंदगी को ही खाना चाहते हैं, गंदगी को ही सुनना चाहते हैं, गंदगी की ही चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि कौवे भी जब आपस में मिलते हैं तो वो भी तुष्यंती च रमंती च, वो भी तुष्यंती च रमंती च का अनुभव करते हैं और आस्वादन करते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद हैं जिनकी विशेष देन है ये श्रीमद् भागवतम, जो अमृत का कुंड है और जिसमें वास्तव में कई प्रकार के कौवे पूरे विश्व में जितने भक्त हैं अलग अलग वर्ण के हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, किसी की अलग अलग वेशभूषा आदि है। किसी भी प्रकार का कौवा क्यों ना हो, कितना ही घृणित क्यों ना हो, वो भागवतम में प्रवेश करेगा विचित्र रूप से तो निश्चित रूप से वो क्या बनेगा? हंस बनेगा। परमहंस संहिता है, इसलिए भागवतम का एक नाम क्या है? परमहंस संहिता। ये विशेष रूप से कंपाइल किया गया है व्यास देव के द्वारा। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम जो एक अनमोल रत्न है और जो श्रील प्रभुपाद की देन है। तो आज के इन श्लोकों में, बल्कि इस अध्याय की शुरुआत में ही शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो मैत्रेय मुनि से ये विदुर पुण्यतम कृष्ण कथा सुनने के लिए क्या करता है? बारंबार जिज्ञासा करता है। वासुदेव कथा धृतः, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि विदुर वासुदेव की कथा को आदर के साथ सुनना चाह रहे थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया? उनसे रिक्वेस्ट की मैत्रेय मुनि से। मैत्रेय मुनि को ये नहीं कहा कि अरे मैत्रेय कब से भागवतम क्लास दे रहे हो, प्रसाद का टाइम हो गया, बंद करो। हम देख रहे हैं कि कई दिनों से सुनते जा रहे मैत्रेय मुनि से और सुनने के बाद फिर भी वो कभी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं कि अभी और मत सुनाओ, बल्कि उनकी लालसा भगवत कथा सुनकर क्या हो रही है? वृद्धिंगत हो रही है, बढ़ ही रही है। और वो जिज्ञासा करते हैं, मनुष्य जीवन मिला है जिज्ञासा करने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन जिज्ञासा अलग अलग धरातल पर अलग अलग जिज्ञासा होती है। तो ऐसे विदुर इतना उन्होंने सुना लेकिन फिर वो थक नहीं गए, परेशान नहीं हो गए, उनकी लालसा क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि वो ऐसे योग्य व्यक्ति से सुन रहे थे। तो ये बहुत आवश्यक है योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम को या भगवान की महिमा को सुनना। योग्य व्यक्ति कौन है? जिसका वर्णन विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर गुरुवाष्टकम में करते हैं। वो कहते हैं श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नामना प्रतीक्षणास्वादन लोलुपश वंदे गुरु श्री शरणारविंद। ये योग्य व्यक्ति हैं जो वास्तव में भागवतम को या भगवान की महिमा का उचित ढंग से गुणगान कर सकता है, क्योंकि ऐसा भक्त जो सदैव क्या है प्रतीक्षणास्वादन लोलुपश, वो प्रतीक्षण राधा माधव के नाम रूप गुण लीला का क्या करता है अपने हृदय में आस्वादन करता है, और आस्वादन नहीं करता है वो भी अत्यधिक लोलुप होता है भगवान की महिमा को सुनने के लिए और भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए, दोनों चीजों के लिए वो अत्यधिक लोलुप या लालायित रहता है। इसलिए ऐसे जो भक्त हैं जिनकी तुलना गाय से की गई है, आपने यदि गाय को पाला होगा तो आपको पता चलेगा, हमें याद है बचपन में गाय को जब दुहा करते थे तो बछड़े को छोड़ने के लिए जाते थे तो बछड़ा तो इतना लालायित कि वो आपको ही पीना शुरू करता है, आप छोड़ रहे हो आपके हाथ को ही वो पीना शुरू करेगा या फिर ऐसा दौड़ेगा गाय को देखकर, और फिर गाय की ओर तेजी से जैसे भागेगा तो गाय के स्तनों में जाकर आपने मुंह से ऐसा स्पर्श करता ही कि नहीं, थोड़ा सा ऐसा मारता है तो गाय क्या करने लगती है दूध देने लगती है बहुत क्विकली तेजी से। तो उसी प्रकार से जब योग्य और लालसा जिस भक्त के हृदय में है भगवान की महिमा को सुनने के लिए, तो फिर ऐसा जो भक्त है महान जिसके पास क्या है कृष्ण कथा का भंडार है नाम रूप गुण लीला धाम जिसके हृदय में निवास कर रहा है, ऐसा भक्त गाय के समान उसको टच करो तो कृष्ण कथा फ्लो हो जाएगी। सबसे कठिन चीज है इस संसार में कृष्ण का गुणगान करना, हमें कोई भी कितना भी कहे बताओ कृष्ण के बारे में हमारी जीवा कृष्ण का गुणगान करने में बहुत सक्षम नहीं है, भगवान का गुणगान स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते। यदि हमें अपने बारे में बोला जाए कि अब अपने बारे में सुनाओ तो हम अत्यधिक या बहुत उत्साह पूर्वक अपने गुणों का गान कर सकते हैं। तो ऐसे भक्त या भक्त का मतलब है जिसका स्वाभाविक रूप से भगवान के गुणों का गान करने में भगवान की महिमा का सुनने में स्वाभाविक रूप से इंक्लिनेशन है, वो वास्तव में भक्त है भगवान कृष्ण का। तो यहाँ विदुर के बारे में देख रहे हैं कि विदुर के हृदय में स्वाभाविक रूप से इंक्लिनेशन है, हाँ उसको कोई फोर्स नहीं कर रहे मैत्रेय प्यारे बैठ के सुन, नहीं वो स्वाभाविक रूप से सुनना चाह रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में भगवान के लिए अत्यधिक प्रीति है। तो आज जो दूसरा श्लोक है इससे पहले वाला श्लोक उसमें विदुर बोलना शुरू करते हैं और विदुर कहते हैं सवै स्वयं भुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयं भुव, वो कहते हैं ब्रह्मा का एक नाम है स्वयं भू, तो जो ब्रह्मा से जो प्रकट हुए हैं स्वयं भू मनु जो ब्रह्मा के अति प्रिय पुत्र हैं, वो कहते प्रतिलभ्यम अभी अभी उन्होंने शादी की है, वो कहते हैं अभी शादी की है पत्नी मिली है बहुत प्रिय है, अभी पत्नी के साथ उन्होंने क्या किया या पत्नी मिलने के बाद क्या किया आप मुझे सुनाओ। कोई कह सकता है कि विदुर ऐसा उत्पटन चीजें क्यों पूछ रहा है, अभी अभी शादी करके आया है वो बेचारा और शादी के बाद करेगा क्या, आजकल लोग शादी के बाद चले जाते हैं चंद्रमा में चले जाते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि ऐसे स्त्री पुरुष के बारे में सुनने के लिए कि विदुर इतना लालयत क्यों है, बल्कि विदुर जानते थे कि कोई असाधारण स्त्री पुरुष नहीं है स्वयं भू मनु, क्योंकि विदुर जानते हैं निर्बंध है कृष्ण संबंधे, ये भक्त हैं। भक्त का मतलब है कृष्ण के संबंधित उचित रूप से वो देखता है। तो विदुर जानते हैं कि महाराज जो स्वयंभू मनु है उनका बहुत गहरा संबंध किससे है कृष्ण से है, तो विदुर कोई पागल व्यक्ति नहीं है बल्कि विदुर के बारे में हमें जानना चाहिए। विदुर कौन है, धर्मराज है, धर्मराज यमराज है जो मंडूक मुनि से शापग्रस्त हुए थे। तो कैसे संभव हो सकता है कि एक धर्मराज अधर्म की कथा सुनने में बड़ा उत्सुक हो, कोई सर्वसाधारण स्त्री पुरुष के कार्यकलापों को सुनने में आनंद अनुभव करता हो, बल्कि धर्मराज केवल धर्म की कथा सुनना चाहते हैं। और ऐसे धर्मराज विदुर जो यमराज हैं और 12 महाजनों में एक हैं और सदैव विदुर पांडवों के हितेशी हैं, ऐसे कैसे चाहेंगे इन स्त्री पुरुष के बारे में सुनना साधारण। तो इसलिए वो कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि ऐसे विदुर धर्म कथा सुनना चाहते थे क्योंकि वो हंस के समान है और हंस निरंतर सुंदर जलाशय आदि में ही क्या करता है, रममान होता है। हंस को कहां भी छोड़ दो गंदगी में, वो दौड़ते हुए ढूंढेगा मानस सरोवर, वहां जो सरोवर सुंदर जल से भरा हुआ है जिसमें कमल आदि पुष्प खिले हुए हैं। लेकिन कौवे को जहां मर्जी छोड़ो घूम फिर के कहां आएगा, गंदगी में बैठेगा। वैसे जैसे मक्खी होती है, मक्खी को अच्छे स्थान में लेके आओ उसको आनंद नहीं आएगा, वो वैसे ही भागेगी गंदगी में। तो हम में भी हंस के समान भक्ति में आने के बाद वस्त्र हमने पहन लिए होंगे लेकिन अंदर भावना कैसे हमारे कौवे के समान ही है, जहां भी गंदगी नजर आती है तुरंत हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और हमारी आंखें चौड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कान पूर्ण रूप से खुल जाते हैं और बड़ा ऐसी गंदगी को सुनने में, गंदगी को देखने में, गंदगी की चर्चा करने में कौवे के समान हम आनंद लेते हैं। तो इसलिए विदुर जो एक महान भक्त है और वो भगवान के दूसरे महान भक्त के बारे में क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो इसलिए आज का जो श्लोक है जिसमें कहा गया है कि क्यों विदुर महाराज स्वयं भू मनु के बारे में सुनना चाहते हैं, तो यहाँ दो चीजें बताई गई हैं कि ये दो चीजों के कारण वो ऐसे महान भक्त के बारे में सुनना चाहते हैं। पहली चीज क्या है, यहाँ विदुर कहते हैं चरितार्थस्य राजर्षि, क्योंकि वो राजा कैसा है, राजर्षि है, ऋषि है। हाँ, ऋषि का मतलब पिछले हफ्ते जब हमने चर्चा की थी ऋषि तत्व के बारे में, तो ऋषि कौन, किसे ऋषि कहते हैं या किसे भगवान का भक्त कहते हैं, तीन गुणों का वर्णन हमने किया था। पहला है ऋषि या भक्त वो है जो सदैव दूसरे जीवों के हित के लिए चिंतित रहता है, और ऐसा नहीं कि केवल वो चिंतित ही रहता है। हाँ, दूसरा गुण है ऋषि का कि वो केवल चिंतित नहीं रहता बल्कि उसे पूर्ण ज्ञान होता है कि उन जीवों का हित किसमें हो सकता है या भलाई किसमें है। केवल ऐसे नहीं कि वो चिंतित है, उसको पूरा ज्ञान है, बस इतना यहां तक सीमित नहीं। प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं उसके पास तीसरा गुण है कि उस ज्ञान को अप्लाई करता है अपने जीवन में, बड़ी सी बड़ी रिस्क उठाकर, तब वो वास्तव में पूर्ण रूपेण ऋषि कहलाता है या उसे वास्तव में भक्त कहा जाता है या वैष्णव कहा जाता है। तो ऐसे जो स्वयं व मनु है जिन्होंने एक महान भक्त का आश्रय ग्रहण किया है, जिसके कारण इस स्वयं व मनु को राजर्षि की उपमा दी गई है। और दूसरी चीज क्या है, विदुर कहते हैं विश्वक्सेन आश्रयो, विश्वक्सेन भगवान का एक नाम है कि उन्होंने भगवान विश्वक्सेन का क्या किया है, आश्रय ग्रहण किया है। इसका मतलब प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महाराज स्वयंभू मनु भगवान की क्या है, महान भक्त है, इसके कारण वो भगवान के उस महान भक्त के बारे में सुनना चाहते हैं। हम भी भागवतम क्लास से भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, यहाँ सुनने के लिए आते क्यों, सबसे पहले लगता है कि मैं अटेंडेंस भरना है मुझे, अटेंडेंस भरने के लिए मैं सुनने के लिए आता हूँ, सुनने के लिए नहीं आता। कई बार लगता है कि अरे बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हाँ मैं सीनियर डिवोटी हूँ, हाँ या मैं बड़ा चढ़ा हूँ तो मैं क्लास में नहीं होऊंगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, या फिर हम सोचते उसकी क्लास में नहीं गया तो वो प्रभु जी नाराज हो जाएंगे, हाँ या तो फिर मुझे एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्लास अटेंड करनी है, या तो फिर मुझे उनसे फेवर लेना है अपना, इसलिए मैं क्या करना है, मुझे सुनना है। तो ऐसे एटीट्यूड जब श्रवण में होंगे तो बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, तब उतना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसी भावना से शुरुआत में ठीक है, लेकिन ऐसी भावना को ही हृदय में बांध बांध के हजारों साल गुजार रहे हैं, तो ऐसा भागवतम श्रवण हमारे हृदय पर प्रभाव डालेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, भागवतम के दिव्य संदेश को रोक दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसके कारण भागवतम का संदेश हमारे हृदय तक नहीं पहुंच रहा है, इस कान से आकर उस कान से बाहर निकल रहा है। इसलिए भागवतम इतने साल से सुनते हुए, पढ़ते हुए, चर्चा करते हुए, कोई उसके प्रति आकर्षण नहीं है। कभी भागवतम ग्रंथ उठाने की, हाथ में उठाने के दिन में इच्छा होती नहीं है, कोई क्लास देना हो या कुछ और करना हो तो सारे भागवतम 12 कैंटो सामने रख देते हैं, फिर हम लग जाते तैयारी में। लेकिन वास्तव में भागवतम को ही हमारा एकमेव संगी, एकमेव मित्र, एकमेव गुरु बनाना चाहिए, सनातन गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार से विदुर ऐसी भावना से नहीं सुन रहे थे कि मैत्रेय आप तो बड़ा ग्रेट हो, आप मुझे अच्छा समझोगे इसलिए मैं सुनूंगा, ये भावना उनके अंदर नहीं थी। बल्कि श्लोक में प्रभुपाद या स्वयं वो कहते हैं श्रद्धानश शब्द भागवतम में हजारों बार इस्तेमाल किया है, भगवान ने गीता में भी इस्तेमाल किया है, अश्रद्धानश, हाँ श्रद्धानश। तो ये श्रद्धानश का मतलब है अति इच्छुक है, लोलुप है, लालायित है, उसके हृदय में तीव्र ऐसी कामना है भगवान और उनके भक्तों के बारे में सुनने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में भागवतम परिपूर्ण है भगवान और उनके भक्तों के बीच आदान प्रदान की कथाओं से, और ऐसे कथाओं को या भक्तों के चरित्र को सुनने से क्या होगा, दोनों का फल एक ही है, भक्ति में बढ़ोतरी, भगवान के प्रति तीव्रता से हमारा अनुराग बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद जब ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हैं भागवतम में, तो उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति बारंबार ध्रुव महाराज के बारे में सुनता है, बोलता है ध्रुव का ग्लोरीज और ध्रुव की महिमा को सुनता है, तो उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, बल्कि वो कहते हैं ये तो गौण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा ध्रुव के बारे में सुनने से। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो इस संसार का बेस्ट डिवोटी बन सकता है, केवल हम भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनते हैं। हाँ, इसी कारण से हाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे जो भक्त है वो इस पृथ्वी के आभूषण है। नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में कहते हैं अवनीरा सुसंपद, अवनी मीन्स पृथ्वी की संपदा भगवान के भक्त है। हाँ, कोई स्त्री आभूषणों से सुसज्जित होकर सुंदर दिखती है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपना श्रृंगार करती है, किससे श्रृंगार करती है, भगवान के भक्तों से, भक्त ही पृथ्वी के एकमेव आभूषण है। हाँ, इसलिए कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, महाप्रभु की ये सर्वोत्तम भेंट है उनके जो भक्त है। महाभारत में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है संसार विष वृक्षश ही अस्ते द्विफले अमृतोपमे, इस संसार की तुलना एक विष वृक्ष से की गई है। गीता में भी भगवान ने इस संसार की तुलना एक वट वृक्ष से की है, अश्वत्थ से। तो वैसे ये विष वृक्ष है, और विष वृक्ष के संपर्क में आएंगे तो हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता। लेकिन महाभारत कहते हैं ऐसे विश्व वृक्ष में दो बड़े अद्भुत फल लगे हुए हैं, द्वे फले ही अमृतोपमे, दो फल अमृत के समान है। और क्या है वो दो फल, कदाचित केशवे भक्ति तद भक्ता समागमः, इसमें दो फल है, केशव के प्रति भगवत भक्ति, और दूसरा है भगवान कृष्ण के डिवोटीज या उन भक्तों का संगला, ये वास्तव में इस संसार में दो अमृत के समान फल है, जिसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसको चखने के लिए लालायित होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान, भक्ति और जो भक्त है, ये तीनों इस संसार के नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इन तीनों के संपर्क में आता है, तीनों को छोड़ दो, केवल भगवान के भक्तों के संपर्क में आता है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, वो व्यक्ति भगवान को अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान के भक्तों की तुलना एक कैंडी से की गई है, शुगर कैंडी। शुगर कैंडी को जहां से मर्जी जीभ लगाओ, उसका स्वाद कैसे है, मीठा है, अति स्वादिष्ट है। इसी चीज को वासुदेव श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कहते हैं। वासुदेव द्वारका में अपने महल में बैठे हुए थे, तो एक दिन नारद मुनि का आगमन द्वारका में होता है, और नारद मुनि जैसे ही द्वारका में आ जाते हैं तो उनका स्वागत आदि करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन आदि देते हैं वासुदेव, कृष्ण के वसुदेव, वासुदेव कृष्ण है जो भगवान के पिता है वसुदेव, वो उनका स्वागत आदि करते हैं, आदर सम्मान से उनको आसन देते हैं, और फिर उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, भगवान भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे नारद, आपकी जो यात्रा है वो सारे जीवों का हित करने के लिए है। हाँ, स्वस्तये सर्वदेहिनाम। हाँ, तो फिर दो प्रकार के जीव इस संसार में। वो कहते हैं, कृपणानाम यथा पित्रोर उत्तम श्लोक वर्तमानाम। वो कहते हैं, पहले प्रकार का व्यक्ति जिसका हित करने के लिए आप निकलते हैं, वो कौन है, कृपण, पीड़ित, इस संसार को ही सर्वे सर्वा मानने वाला, जो भौतिक भोगों में जो लिप्त है या इस संसार के दुखों से जो पीड़ित है, ऐसे जीवों का हित करना आप चाहते हैं, जिसके लिए आप ट्रैवल करते हैं, भ्रमण करते हैं। और दूसरा जीव कौन है, उत्तम श्लोक वर्तमाना, उत्तम श्लोक जो कृष्ण है, जिनका गुणगान चुने हुए श्लोकों से किया जाता है, इसलिए भगवान का नाम क्या है, उत्तम श्लोक है। तो जो उत्तम श्लोक की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनकी ओर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आप यात्रा करते हो। जैसे ध्रुव महाराज, वो भी उत्तम श्लोक कृष्ण की ओर जा रहे थे, उनका मार्गदर्शन करने के लिए नारद पहुंचते हैं। हम मृगारी आदि, हाँ, जो पीड़ित जीव हैं, उनका भला हित करने के लिए वो भ्रमण करते हैं। तो वसुदेव कहते हैं कि आपकी इस प्रकार से यात्रा है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज वो कहते हैं, वसुदेव कहते हैं, भूतानां देव चरितं दुखाय च सुखाय च सुखा एव हि साधूनां तादृशाम् अच्युतात्मना। वो कहते हैं कि आप जैसे जो साधु पुरुष हैं, भूतानां देव चरितं, देवताओं का जो चरित्र है, या चरित्रम शब्द यूज किया है, देवताओं का चरित्र क्या है, वो जीवों को सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। इंद्र को ले लो, एक बार पूजा नहीं की, बेचारे ब्रजवासियों को जल से डुबाना चाहा, हाँ, तहलका मचा दिया वहां उन्होंने ब्रज में, इतना स्वार्थी है। अरे इतनी बार तुम्हें प्रणाम किया, इतनी बार तुम्हारी वाहवा की, इतनी बार दीप आदि से पूजा की, नाना प्रकार के व्यंजन तुम्हें अर्पित कर दिए, एक बार नहीं किया तो क्या हो गया, इतना गुस्सा, इतना आक्रांत। तो लेकिन वो कहते हैं ऐसे ही देवतागण है, इतने स्वार्थी हैं, इसलिए वो कहते हैं, सुखा एव ही साधुनाम तादृशाम अच्युत आत्मना। अच्युत जिनकी आत्मा है, भक्त कौन है, वास्तव में अच्युत जिनकी आत्मा है, हाँ, क्योंकि आत्मा से हम अपने से बहुत प्रेम करते हैं, हाँ, तो सर्वाधिक प्रिय अच्युत जिनके हैं, ऐसे भक्त कैसे हैं, सुखा एव ही साधुनाम, वो हर समय दूसरों को केवल सुख ही देना चाहते हैं, दूसरों का हित, उनसे कोई किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते, ऐसे हैं प्रभुपाद जैसे महान साधु। भजन्ति ये यथा देवान, देवा अपि तथैव तान। वसुदेव कहते हैं देवतागण की जैसे भजन करोगे ना, उतना ही वो आपसे आदान प्रदान करेंगे। भगवान भी कहते ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। आप जितना मुझे दोगे मैं उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, ये बिजनेस है। लेकिन यहाँ वसुदेव कहते हैं छायेव कर्म सचिवा। देवतागण जिस प्रकार से छाया या शाडो एक व्यक्ति के पीछे हमेशा रहती है, उसी प्रकार से देवतागण भी उसके पीछे रहते हैं जब तक कोई उसको देता रहता है। साधवो दिनवत्सला, वो कहते लेकिन साधुगण ऐसे नहीं है, उनको दो या नहीं दो, वो क्या है, दिनों का सदैव, दिनों दिन दुखी हरी, जीवों के प्रति सदैव वत्सल है, प्रेमी है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के संपर्क में आता है, हाँ, तो उसका हित निश्चित है। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्तों के संपर्क में तीन प्रकार से आता है। सबसे पहला प्रकार क्या है, और इन तीनों प्रकारों में यदि भगवान के भक्तों के संपर्क में हम आ जाते हैं तो निश्चित रूप से है 100% गारंटी के साथ वो व्यक्ति कृष्ण प्राप्ति अपने जीवन में क्या करेगा, करेगा, प्राप्त करेगा निश्चित रूप से। पहली चीज क्या है, भागवतम कहता है यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान भक्तों के बारे में सुनता है, यह है पहली चीज। जब हम भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण की कथा और भक्त की कथा दोनों अभिन्न है। बल्कि एक जगह कहते हैं कि उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट कि भगवान भी अपने स्थान को छोड़कर भक्त की कथा को सुनने के लिए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थान गंभीरा को छोड़ते हैं, दौड़ते हुए टोटा गोपीनाथ मंदिर गदाधर पंडित के पास जाते हैं और गदाधर को कहते, गदाधर मुझे भक्त चरित्र सुनाओ, भागवतम सुनाओ जिसमें प्रहलाद ध्रुव आदि का वर्णन है। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को आनंदित होकर ये दो चरित्रों का प्रतिदिन वर्णन करते थे। इसलिए तो पार्वती देवी को शिवजी कहते हैं आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनां परम, कि आराधनाओं में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी किंतु तस्मात् परतरं देवी, हे देवी उससे भी श्रेष्ठ क्या है, तदीयानां समर्चनम्। हाँ, तदीय वस्तु जो भगवान की प्रिय है या भगवान के समान है, ऐसे चार तदीया है भागवतम में। एक है गंगा, एक है भागवतम, एक है तुलसी और एक है भगवान कृष्ण के भक्त, जिनको चार चार चीजें साक्षात भगवान का अवतार है इस कलियुगा में। हाँ, ये ऐसे अर्च विग्रह है चार, जिनको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको डायरेक्ट पूजा जा सकता है और वही लाभ प्राप्त किया जा सकता है जो लाभ हम भगवान के विग्रह की आराधना करके प्राप्त करते हैं। इसलिए शिवजी कहते हैं तदीयानां समर्चनम्। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कोई व्यक्ति भगवान के ऐसे भक्तों का चरित्र को सुनता है, ऐसे कई डिवोटीज है जिनको मैं जानता हूं कि डेली वो भगवान के चरित्र को कुछ ना दिन में समय निकालकर पढ़ते पढ़ते हैं। आजकल तो इंटरनेट में गौड़िया हिस्ट्री में सारे आचार्यों का जीवन चरित्र है, तो वह डिवोटीज कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं। आजकल ऐप भी आ गए हैं जिसमें सारे आचार्यों के क्या है, जीवन चरित्र है। तो कई भक्त हैं संसार में जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ गौड़िया वैष्णव का चरित्र पढ़ ही लेते हैं जिससे वो शुद्धि अनुभव करते हैं। इसी को श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी ध्रुव का चरित्र वर्णन करने के आखिरी में कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ध्रुव महाराज के बारे में सुनता है, जो अच्युत कृष्ण को अति प्रिय है, उसके साथ दो चीजें होगी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या भवेत भक्तिर भगवती, भगवान भगवान कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति स्थापित हो जाएगी, और दूसरा उसके जीवन के सारे जो कलमश हैं वो मुक्त हो जाएंगे, कलमश से वो मुक्त हो जाएगा। और उसी को सुखदेव गोस्वामी ने जब अम्बरीश महाराज का चरित्र उन्होंने वर्णन किया, और अम्बरीश महाराज के चरित्र खत्म कर ही रहे थे आखिरी श्लोक में, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संकीर्तयन अनुध्यायन भक्तो भगवता भवे। जो भी व्यक्ति निरंतर अम्बरीश महाराज के इस आख्यान या चरित्र का स्मरण करता है, अनुध्यानम स्मरण करता है, या उसका वर्णन करता है, संकीर्तयन वो कहते हैं कीर्तन करता है, तो क्या होगा भक्तो भगवतो भवे, ऐसा व्यक्ति भगवान का महान भक्त बनेगा। इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की गाथा को सुनता है तो निश्चित रूप से वो भगवत भक्ति से आप्लावित हो जाएगा। उसी को ही वामन पुराण में कहा गया है ऋषिनाम चरितं श्रुत्वा मुक्तो भवति किल्बिषे, ऐसे महान भक्तों के चरित्र को सुनने से व्यक्ति सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है। और उसी चीज को परीक्षित महाराज ने जब शुकदेव गोस्वामी को देखा, देखते ही बोला एशाम संस्मरण पुंसाम, कहते आप जैसे भक्तों का स्मरण करने मात्र से क्या होता है सत्यो शुद्ध्यन्ति वैग्रह, सत्यो मीन्स क्विकली, तुरंत व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, वो नहीं उसका घर दार सब कुछ शुद्ध होने लगता है। तो इस प्रकार से हम भगवान का जो भक्त है उनके संपर्क में हम आते हैं, हाँ उनके बारे में सुनकर, और उनको कोई सुनता है तो सबसे पहले भगवान के भक्तों का जो गुणगान करता है आनंद के साथ सुनता है। इस संसार में बड़ी बीमारी है, हम किसका गुणगान प्रशंसा करना नहीं चाहते हैं और किसी का गुणगान सुनना नहीं चाहते, हमारा हृदय क्या है द्वेष आदि से भरा हुआ है। इसी कारण से यदि कोई व्यक्ति भक्तों का गुणगान करता है उनके बारे में सुनता है तो सबसे अधिक आनंद कृष्ण को होता है। हाँ कृष्ण कहते अरे मेरे भक्त का गुणगान, प्रभुपाद का गुणगान कोई कर रहा है, सबसे अधिक आनंदित कोई होते हैं या नाचने लगते हैं वो है कृष्ण। जैसे हम किसी बच्चे का गुणगान करते हैं माता पिता खिल जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, बच्चे का आपने थोड़ा गुणगान कर दिया हाँ वो सब प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। उसी प्रकार से हाँ ये भगवान के भक्तों का महिमा है, गुणगान है, क्योंकि ऐसे भगवान के भक्तों का चरित्र क्या है अपने आप में शास्त्र है। शास्त्र नहीं भी हो तो शास्त्र कंपाइल किया जा सकते हैं ऐसे महान भक्तों के चरित्र को क्या करके देखकर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, धर्म की स्थापना तो साधु के व्यवहार से होती है, आचरण से होती है। इतने सारे फिलोसफी सिद्धांत आदि तब तक ड्राई महसूस होता है जब तक कोई भक्त उसमें फिट ना हो। जब सिद्धांत किसी भक्त के चरित्र में फिट होता है तो सिद्धांत भी समझ में आने लगता है और सिद्धांत हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए फिलोसफी इन एक्शन मीन्स वैष्णव का चरित्र, और वो यदि नहीं हमारे सामने है तो हमारे लिए शास्त्र आदि को समझना या भगवान को समझना अति दुर्लभ हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, धर्म का जो तत्व है सार है वो भगवान के भक्तों के हृदय में होता है। जब हम उनके बारे में सुनते हैं हाँ अगले श्लोक में कल के श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भगवान के भक्त का गुणगान केवल भगवान का शुद्ध भक्त कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए महान भक्त का गुणगान, तो उसका प्रभाव हाँ बहुत अधिक होता है। तो भगवान गीता में भी अपने भक्त का वर्णन करते हैं महात्मानस्तु माम, भगवान कहते मेरा है वो, माम पार्थ हे पार्थ, ये महात्मा किसका है मेरा है, और करता क्या है सततम कीर्तयन्तो माम, वो सतत मेरे गुणों का गान करता है। उसका मतलब है कि ऐसा जो महात्मा है उसका हृदय रिजर्व है, किसके लिए रिजर्व है कृष्ण के लिए, उसी को भागवतम में कृष्ण कहते हैं साधवम हृदयम मह्यम साधुना हृदयम त्वहम, साधु मेरे हृदय में है और मैं साधु या महान भक्त के हृदय में है। इसलिए वास्तव में साधु भगवान के अलावा अपना अपना हृदय किसी को अर्पित नहीं करना चाहता। एक वेश्या हरिदास ठाकुर के पास आई थी, क्या मांग रही थी वो? हृदय मांग रही थी। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा हृदय तो नाम संकीर्तन है और इसमें अटका हुआ हुक हो गया है, जब निकलेगा ना तब तुम्हारे बारे में सोचूंगा, अभी निकला ही नहीं रहा था। 3 दिन बीत गए, इतना टाइट हुक हो गया था कि वो हृदय उसमें से बाहर नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार से भक्त मीन्स जिसका हृदय, हम गोपियां ध्यान करती हैं, उद्धव गए गोपियों को कहते आजकल ध्यान कौन क्लास दे रहा है ब्रज में, ध्यान की शिक्षा आपको कौन दे रहा है? गोपियां कहती है हम ध्यान इसलिए लगा रहे हैं, ध्यान से कृष्ण को बाहर निकालना चाहती हैं, उनका ये उद्देश्य ध्यान लगाने का। गोपियां जितना मर्जी प्रयास करे कृष्ण को अपने हृदय से बाहर नहीं निकाल सकती। तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों का जो चरित्र है वो वास्तव में कृष्ण कथा का उदय है। भागवतम के पहले स्तन में आप पढ़ेंगे तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि कहते हैं, अभी मैंने व्यास देव नारद मुनि आदि का सब कथाएं सुना दिया, दासी पुत्र वगैरह, एक श्लोक में बोलते हैं सूत गोस्वामी, वो कहते हैं परीक्षितोत राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथाद्वयम्। कहते वक्ष मीन्स में बोलने जा रहा हूं, कृष्ण कथा का उदय हो रहा है। कहां से उदय हो रहा है? कहते परीक्षित महाराज का चरित्र है, कृष्ण की कथा भी जन्म लेती है भगवान के भक्त की कथा से। इस प्रकार से इवन भागवतम की शुरुआत ही नारद जैसे महान ऋषि की कथा से हुई है या परीक्षित महाराज की कथा से हुई है, तब आगे जाकर हम अलग अलग अवतारों को लेकर तब जाकर कहा कृष्ण की डायरेक्ट कथा दशम स्कंध में सुनते हैं। तो इसलिए भक्तों का जो चरित्र है वो अपने आप में उपदेशों का मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए भक्तों का चरित्र सदा नवीन है, मंगलमय है, सात्विक है और स्फूर्ति देने वाला है। जब हम भक्ति में ढीले हो जाते हैं, बाधाएं आते हैं, तो इस्कॉन के डिवोटी जब क्या करते हैं, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, पढ़ते ही जोश आने लगता है, स्फूर्ति आ जाती है, फिर से ठीक हो जाते हैं, आगे दौड़ने लगते हैं। तो ऐसा स्फूर्तिदायक है, मनन करने योग्य है, सेवन करने योग्य है, हाँ, और ऐसा जो चरित्र है जो वास्तव में भगवत भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम का सच्चा स्वरूप है। तो ऐसे चरित्र को कोई व्यक्ति सुनता है या भगवान के भक्तों का नामों का उच्चारण भी करता है तो निश्चित रूप से उसका अंतकरण पवित्र हो जाता है और भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रीति जागृत हो जाती है। हाँ, तो इसलिए हमें भगवान के भक्तों का चरित्र सदैव श्रद्धा के साथ सुनेंगे, चित्त को पूर्ण रूप से संलग्न करेंगे तो क्या होगा, सहज रूप से भगवत भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो समय तो हो गया है, तो 3 चीजें हैं जिसको मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। पहला है कि भगवान के भक्तों के संपर्क में हम आते हैं, उनके बारे में उनकी महिमा उनके चरित्र आदि को सुनकर, और दूसरा संपर्क है ऐसे महान भक्तों से भगवान की महिमा को सुनकर। हाँ, जैसे रुक्मिणी ने सुना श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, वो कहते आप कृष्ण के बारे में आप जैसे भक्तों से सुना, नारद से, नारद आके भीष्म को सुनाते थे तो ये पर्दे के पीछे खड़ी होकर सुनती थी, हम पर्दे के पीछे हो जाते हैं जब सुनने का समय आ जाता है, और वो कहती है कि मैं अब किसी और से विवाह नहीं करूंगी, मेरे एकमात्र प्रिय है। हाँ, वो कहते मैंने लज्जा छोड़ दी, एक श्लोक में कहते श्री को लज्जा होनी चाहिए बोलने के लिए, कहते मैं लज्जाहीन हो गई कि कृष्ण मेरे आराध्य हो गए हैं। तो सुनते हैं जब महान भक्तों से तो हमारा चित्त फिक्स हो जाता है कृष्ण में और कृष्ण ही हमारे जीवन के लक्ष्य नजर आने लगते हैं, ऐसे हजारों उदाहरण है। और तीसरा संपर्क भगवान के भक्तों से होता है, हाँ उनके वाणी सेवा करके उनके आदेशों का पालन करते हैं, हाँ उन आदेशों को हम पूर्ति करते हैं। जैसे वाल्मीकि ने किया नारद के आदेशों का पालन, मृगारि ने किया, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। हाँ तीसरा एक प्रकार है, जैसे हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन परिवर्तित होकर हाँ बदल जाता है कृष्ण भक्ति में। और कृष्ण प्रेम की जो परम सिद्धि है वह हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में ये कोई केवल कृष्ण के बारे में सुनने में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। हाँ भागवत के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कनिष्ठ भक्त हैं वो केवल भगवान के बारे में सुनना चाहता है, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहता है। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कनिष्ठ भक्त है, लेकिन जो उत्तम भक्त है हाँ उससे जो बढ़कर है वो भगवान और उनके भक्त हाँ उनके बारे में सुनने में आनंद लेता है। तो ऐसे विदुर जो एक महाभागवत है और एक महाजन है जिनके हृदय में धर्म का सार एक छुपा हुआ है, जो कृष्ण पांडव आदि के लिए अति प्रिय है, जो मैत्रेय मुनि से भगवान के बारे में उनका सृष्टि आदि सब कुछ सुना, फिर वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, भगवान के एक महान आदि राजा प्रथम राजा स्वयंभू मनु के चरित्र के बारे में सुनने की लालसा या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं मैत्रेय मुनि के चरणों में, क्योंकि ऐसे स्वयंभू मनु जिन्होंने विश्वक्सेन भगवान का आश्रय लिया था और वो स्वयं राजर्षि हैं, स्वयं महान भक्त का भी उन्होंने आश्रय लिया है, जो स्वयं एक महान कृष्ण भक्त है। तो इससे हम सीख सकते हैं कि भगवान के भक्तों के बारे में सुनने में हमें रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए, सुनना चाहिए हम भक्तों की प्रशंसा को और महान भक्तों के चरित्र को, जिससे क्या होगा हमारे हृदय में हजारों तल्मश हैं वो एक न एक दिन क्लीन हो जाएंगे और एक न एक दिन हम भगवान के प्रति जो सुप्त ना जो चेतना है उसकी जागृति के अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।